एक महाभारत की कथा है। महाभारत जो भारत का सच्चा इतिहास है, उस महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार हस्तिनापुर के जंगल में, जब हस्तिनापुर में वो शिक्षा दे रहे थे गुरु जी द्रोणाचार्य, तो उनको राजकीय टीचर नियुक्त किया गया था धनुर्वेद में। क्षत्रिय राजकुमार थे कौरव पांडव, तो उनको शिक्षा देने के लिए भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था। द्रोणाचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे और बहुत बड़े धनुर्धर। भगवान परशुराम जी से इन्होंने धनुर्विद्या सीखा था, साक्षात भगवान से, और भगवान ने आज्ञा दिया था कि इसे, इस धनुर्विद्या को कोई हीन व्यक्ति को नहीं देना है। क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, ब्राह्मणों को सिखाना और क्षत्रियों को सिखा सकते हो, लेकिन क्षत्रियों से नीचे के लोगों को नहीं देना है, भगवान की आज्ञा थी। तो द्रोणाचार्य इसको निभाते थे। तो एक दिन की बात थी, इनके पास एक भील आया। भील मतलब जंगली जाति का आदमी। उसने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को और कहा कि हम भी धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, उसने बताया कि मैं भील हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तो इसका मतलब है तुम बहेलिया का काम करोगे, तो ये धनुष विद्या तो किसी से भी सीख सकते हो, हमको नहीं सिखाना है। लेकिन वह व्यक्ति पक्का निश्चय वाला था, उसने मन में मान लिया था कि द्रोणाचार्य को ही गुरु, उनसे मैं धनुष विद्या सीखूंगा। तो वो तो बड़ा निराश हुआ, द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दिया, धनुर्वेद नहीं सिखाया, तो अपने घर चला गया। उसका घर जंगल में ही था, एक टूटा फूटा घर था, उसी में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और उस मूर्ति से वो सीखने लगा। उसको बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी, अगाध प्रेम था द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य से ही वो सीखता था धनुष चलाना और यहां तक कि मंत्र पढ़ना इत्यादि सब। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर तुम बनोगे, तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं होगा। एक दिन की बात थी, द्रोणाचार्य निकले हस्तिनापुर से जंगल की ओर। तो उनके साथ है अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन आदि सभी थे। तो हस्तिनापुर से एक कुत्ता भी निकला उनके साथ। तो जंगल में गया तो कुत्ता जा करके एकलव्य के घर पर, उस भील का नाम एकलव्य था, वहां भौंकने लगा और वो ध्यान से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसको डिस्टर्ब हुआ तो कुत्ता के भौंकने से, तो वह कुत्ता के आवाज को बंद करने के लिए धनुष पर बाण चलाने लगा, वो कुत्ता भौंके ना, तो उसके मुख में बाण मार करके उसका मुख भर दिया, पूरा मुख भर गया, तो कुत्ता बोल नहीं पाया। तो फिर भागा भागा वो आया राजकुमारों के पास, अर्जुन के पास, द्रोणाचार्य भी वहां थे। तो अर्जुन ने वह देखा तो ये चकित हो गए। अर्जुन यहां तक पूछे, गुरुजी आपने किस व्यक्ति को यह विद्या सिखाया है, ये तो हमको विज्ञान नहीं है। कुत्ते को ऐसा बाण मारा है कि जिह्वा में नहीं बाण लगा है, मसूड़ा नहीं छिला है, कहीं चोट नहीं है, केवल बाण भर गया है। अब जरा विचार कीजिए इस तरह से बाण चलाना कि केवल मुख में जा करके बाण स्थगित हो जाए और भर जाए, कोई दर्द नहीं कुत्ता को, केवल आवाज बंद हुई थी। तो अर्जुन को तो चिंता हुई, लेकिन द्रोणाचार्य कहे, सांत्वना दिए, ठीक है मैं पता लगाता हूं कौन व्यक्ति है। तो उस कुत्ते के माध्यम से जो कुत्ता फिर जाने लगा, उसको भगाए तो जिधर भाग रहा था उधर जाने लगे। तो कुत्ता जाते जाते गया वहां एकलव्य के कुटिया में, घर में। तो वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई थी और एकलव्य स्वयं बनाया था मूर्ति, बहुत बड़ा कलाकार नहीं था, जैसे तैसे बना करके मूर्ति, और उन्हीं के द्वारा धनुर्विद्या सीख रहा था। तो फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, ये कुत्ते को तुमने बाण मारा है? उसने कहा कि हाँ, ये आपकी कृपा से मैं सीखा हूं और मारा हूं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम किससे सीखे हो ये सब कला? उसने कहा कि ये तो आपसे सीखता हूं। हमसे सीखते हो? कैसे हमसे? तो उसने मूर्ति दिखाया भीतर कि देखिए, मैं आपकी मूर्ति बना करके और इससे सीख रहा हूं, आपकी कृपा से सब सीखा हूं। तब द्रोणाचार्य ने अंत में कहा, ये संवाद लंबा है, उन्होंने कहा कि मुझको गुरु मानते हो? तो एकलव्य ने कहा कि हाँ। तो कुछ गुरु दक्षिणा दे सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ, आज्ञा कीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दो हमें, बस आज्ञा पानी थी, और आज्ञा पाते हैं बस तलवार से तुरंत अंगूठा काट करके और दे दिया है। इसको कहते हैं निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा। गुरु में ऐसी श्रद्धा थी कि उनके मांगने से उसने अंगूठा दे दिया, उस अंगूठे से ही धनुष पर बाण चलाया जाता है। तो जो भी हो, सामाजिक बैलेंस रखने के लिए कि क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहिए, इसके लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो भगवान परशुराम की आज्ञा थी, इसलिए द्रोणाचार्य ने सब किया। पर एकलव्य की महानता देखिए, उसने दे दिया, उसके बाद वो धनुष विद्या बाण नहीं चला पाता था। पर मुख्य बात यह है कि जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके वो इतना एक्सपर्ट धनुर्धर हो सकता है भौतिक विद्या, तो फिर ये तो आध्यात्मिक विद्या है, तो हमारा स्वरूप है, अगर इसमें कोई एक्सपर्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। और प्रभुपाद जी की मूर्ति है, प्रभुपाद जी की केवल मूर्ति नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते भी हैं, प्रवचन करते हैं, उनके प्रवचन हैं, उनकी पुस्तकें हैं, तो हम क्यों नहीं सिद्धि पा सकते हैं? जब एकलव्य द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना करके इतना बड़ा धनुर्धर हो गया, तो फिर भगवान की भक्ति तो हमारा स्वरूप है, अगर उसमें हम श्रील प्रभुपाद जी को आदर्श मान करके और उनकी कृपा चाहते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? यह सत्य घटना है, कोई गढ़ी हुई नहीं है। इसे महाभारत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसमें कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसी महाभारत का अंश है भगवत गीता है। यह आर्ष ग्रंथ है, उसमें झूठी कथाएं नहीं लिखी जाती है, यह सत्य इतिहास है। तो एकलव्य की अपने गुरु के प्रति निष्ठा, द्रोणाचार्य के प्रति निष्ठा, जो उपेक्षा कर रहे थे ब्राह्मणेतर जान करके या क्षत्रियतर जान करके उसको शिक्षा नहीं दिए, और फिर भी उसने अपनी श्रद्धा से इतनी महान शिक्षा पा ली, महान धनुर्धर हो गया। तो इससे शिक्षा मिलती है कि गुरु के प्रति महान श्रद्धा होनी चाहिए, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में सिद्धि पाता है। तो अपने प्रयास से अपने में जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही हमको सिद्धि मिलेगी। भगवान भी कहते हैं गीता में, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयत्। अपना उद्धार अपने से करना चाहिए, अपने को दुख चिंता में नहीं डालना चाहिए। अपना उद्धार व्यक्ति के अपने हाथ में ही है। तो बहुत बड़ा गुरु होने से क्या होगा, यदि प्रभुपाद जी ने मान लीजिए दीक्षा दिया, प्रचार किया, शिक्षा दिया, अगर कोई महामंत्र न जपे और बहुत तैयारी मन में न रखे तो क्या करेगा। बहुत बड़े ऊंचे गुरु से दीक्षा लेकर के भी आदमी लापरवाही करे तो सिद्धि नहीं पा सकता है। और साधारण व्यक्ति से भक्ति सीख करके अगर तत्पर है, उसमें लगन है, श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति सिद्धि पा जाता है। भगवान लीला करते हैं तो लीलाओं में अनेक संकेत होते हैं भगवान के। बद्ध अवस्था में ही भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। ऐसे भगवान तत्वतः कभी बद्ध नहीं है, लेकिन प्रकट बद्ध है ना, माँ यशोदा ने बांध दिया है, बांधा है और फिर भी उद्धार कर दिए। यह झांकी या दृश्य अपने मन में हमेशा सोचना चाहिए, ये भगवान कितने मनोहर हैं। इसी से गोपियों ने, जसोदा की सखियों ने उनको उसी दिन से दामोदर कहना चालू किया। अब बुलाती थी कहें, और व्यंग में भी दामोदर कहती थी। दामोदर कहने का मतलब था, कोई बोलती थी कि ये दामोदर, इसका मतलब कि अरे चोर, मटकी फोड़ने वाला बदमाश। दामोदर मने यही हुआ ना, जिसके पेट में रस्सी बांधी गई थी। ये जब कोई कहता था तब कृष्ण रंज होते थे, यह भी उनकी लीला है। एक बार माता रोहिणी उनको बुलाने गई खाने के लिए, तो खेल रहे थे, तो माता रोहिणी ने कह दिया दामोदर चलो भोजन करने, वे नहीं गए। अबे भीतर से नाखुश हो गए कि हमारी माँ होकर के और हमको ऐसे कह रही है। जब यशोदा जी गई उन्होंने दामोदर नहीं कहा। जिस दिन दाम बंधन हुआ था उसी दिन यशोदा जी गई तो वे आ गए खाने के लिए, पर रोहिणी जी के बुलाने से नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कह दिया दामोदर। तो किसी भी कर्म से किसी की इज्जत होती है या बदनामी होती है नाम से। तो यह नाम कृष्ण का बदनाम, गलत काम को बता रहा है ना। जिसके पेट में रस्सी बांधी गई थी तो फिर क्यों बांधी गई थी। तो एक दिन ऐसी शैतानी किया था, अपने घर में दही का मटका फोड़ दिया था, इसीलिए इसकी मां ने बांधा था और कोई दूसरा नहीं, खास मां, इतना भलमानुष है कि मां ने बांधा था। तो कुछ भी हो, रंज भी हो कृष्ण, फिर भी ठीक है। वो चीड़े भी दामोदर कहने से तो ठीक है, लेकिन वास्तव में चिड़ते नहीं है, उनको ये नाम बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा मां यशोदा के वात्सल्य भाव का स्मरण हो आता है कि मां मेरा हित करने के लिए मुझे बांधी थी। बहुत प्रिय नाम है, ऐसे दामोदर भगवान की छवि हृदय में रखनी चाहिए। हरे कृष्णा।